मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 7 जनवरी 2020 है और आज के इस AFEIS की लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए आज के लाइफ मैनेजमेंट में हम सब मिलकर किताबों की गंगा में गोता लगाते हैं। किताबों की गंगा में गोता, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, जब कुंभ मेला आता है फिर चाहे कड़कड़ाती ठंड ही क्यों न हो, आप देखिए कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान कितनी गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ कुंभ मेले में शामिल होता है और ठंडे जल में गोते लगाता है, दांत कटकटाते रहते हैं, इसके बाद भी वह स्मरण करता है तो ईश्वर का करता है और ठंड की शिकायत कभी नहीं करता। यह है किसी के प्रति आस्था का होना, और जब आस्थाएं काम करने लगती हैं तो बाकी दूसरी सारी शिकायतें कोसों कोस दूर चली जाती है। मुझे लगता है कि अगर हम किताबों के गंगा में गोता लगाने लगें तो सच में कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हो सकता है, और इनफैक्ट होता ही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, और इसके लिए माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों से बीच बीच में प्रश्न पूछ लिया करता हूं। चलिए, सामान्य तौर पर आप ये बताइए, गीता क्या है, रामचरितमानस क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है। देखिए, मैं सामान्य तौर पर कह रहा हूं, सामान्य तौर पर ये क्या है? दरअसल सामान्य तौर पर ये किताबें ही हैं। इनको किसी ने रचा है या कुछ चीजें संग्रहित की गई हैं, हैं तो किताब के ही फॉर्म में, लेकिन हमारे लिए क्या ये केवल किताबें हैं या कि उनसे बहुत कुछ अधिक है? क्या आपको नहीं लगता कि इन किताबों में जो कुछ भी लिखा गया है, जो भी बातें बताई गई हैं, आज हमारा जो कुछ भी जीवन है, जैसा भी जीवन है, जैसा भी हमारा समाज है, जैसे भी हमारी परंपराएं और रीति रिवाज हैं, जैसे हमारे संस्कार हैं, सोचने समझने का तौर तरीका और जीने का अंदाज है, ये सब के सब कहीं ना कहीं इन किताबों से ही आए हुए हैं। मैं किताब कह रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब आप देखिए कि सिख धर्म ने जिस ईश्वर की परिकल्पना की, वो ईश्वर कौन है? गुरु ग्रंथ साहब। तो सीधी सी बात है कि किसी भी चीज में, चाहे वो पुस्तक हो चाहे वो पत्थर हो, जब हम अपनी श्रद्धा का संचार कर देते हैं तो वही वस्तु हमारे लिए जीवंत हो उठती है, और सच पूछिए तो जीवंत से भी अधिक जीवंत हो उठती है। क्या हम दूसरी किताबों के साथ ऐसा नहीं कर सकते? मित्रों, कर सकते हैं। और दरअसल सच पूछिए तो ऐसा करके हम किताबों पर कोई एहसान नहीं करते हैं, न किताब लिखने वाले लेखक पर कुछ एहसान करते हैं। सच यह है कि हम अपने ही जीवन को संवारते हैं, और वह जो हमें रोशनी दिखाता है, किताबें जो रोशनी दिखाती हैं, उन रोशनियों से दिखाए हुए रास्ते पर चलकर कहीं ना कहीं हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। दोस्तों, यहां आप सोच करके देखिए, इस बात पर थोड़ा सा विचार करके देखिएगा कि आपकी कितनी दुनियाएं हैं। बड़ा विचित्र सा प्रश्न है, आप कहेंगे कि कितनी दुनिया है? अरे, दुनिया एक है, देश एक है, दुनिया एक है, हमारे आसपास हम देख रहे हैं, ये हमारी दुनिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा और आगे जाकर के सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं नहीं, मेरी एक ही दुनिया नहीं है, मेरी एक दूसरी दुनिया भी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन दिमाग में हर समय रहती है, और उससे भी मजेदार बात यह कि ये केवल दिमाग में ही हर समय नहीं रहती, बल्कि हम भी हमेशा उसी दुनिया में रहते हैं जो हमारे दिमाग में है, यानी कि कल्पना की दुनिया। हम सब वर्तमान दुनिया में काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो, अदरवाइज इसको लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, इसका आनंद भी उठा रहे हैं। लेकिन हम चाहे कितने भी आनंद में क्यों न हों, आप आनंदित से आनंदित व्यक्ति से जाकर के पूछिए, मैं आध्यात्मिक जगत के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अन्यथा बात कर रहा हूं, हम जैसे आप जैसे जो सामान्य लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वो ज्यादातर समय तो कल्पना की दुनिया में ही रहते हैं, और आनंदित दुनिया से भी एक आनंदित दुनिया, उससे भी एक बेहतर दुनिया वो कल्पना में रच लेते हैं। तो काम हम यहां करते हैं लेकिन रहते उस दुनिया में हैं, या यूं कह लीजिए कि उस दुनिया को पाने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से हम सबकी, देखिए, दो दुनियाएं हैं, एक ही दुनिया नहीं है, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हाँ, बुरी बात तब होती है जब कल्पना की दुनिया ही पूरी दुनिया बन जाती है और वर्तमान दुनिया की हम उपेक्षा करने लगते हैं, गड़बड़ी वहां होती है, अदरवाइज ठीक है। संतुलन बना करके चलिए, क्या हर्ज है। हम सब अपने अपने घरों में खिड़कियां रखते हैं तो खिड़कियों से ताजी हवा आती है, सूरज की रोशनी आती है, तो हमारा जो मकान है, जो हमारा कमरा है, वो तरोताजा बना रहता है। तो ठीक है, जो हमारी कल्पना है वो हमारे दिमाग की खिड़कियां हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम खिड़कियों को ही अगर हम अपना घर समझने लगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो ना उसमें छत है ना दीवारें हैं, तो फिर घर कैसा, यहां प्रॉब्लम होती है। तो अब ये किताबें करती क्या है, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बातें करने लगा, इससे किताबों का तो कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, किताबों का संबंध है। किताबें, सच पूछिए तो हमारी जो कल्पना की दुनिया है, जो दूसरी दुनिया है, उसका सहोदर है, उसका, इसे आप जुड़वा भाई कह लीजिए या उसकी जुड़वा बहन कह लीजिए या भाई बहन कह लीजिए, दोनों सहोदर हैं। दोनों का जो जन्म है एक ही उदर से हुआ है। जब हम किसी भी किताब को सामान्य तौर पर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है यार, कुछ बातें लिखी गई हैं, उसमें से हमें कुछ बातें अच्छी लग जाती हैं, कुछ बातों से हम सहमत नहीं होते हैं, और सहमत असहमति के बीच में वो किताब खत्म हो जाती है अगर हम पढ़ रहे हैं तो। अदरवाइज तो लोग जैसे ही उनका ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, या यूं कह लें कि जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो जैसे ही पूरी होती है, किताबों से किनारा कर लेते हैं, जैसे कि इससे कोई दुश्मनी ही हो। आप आज किसी के घर चले जाइए तो आपको घरों में किताबों के लिए जगह नहीं मिलेगी। पहले जहां भी जाते थे कुछ कोई ना कोई किताब आपको उन घरों में देखने को मिल जाती थी। खैर, चलिए वो बात अलग है। लेकिन मित्रों, जो किताबें हैं वो करती क्या है। किताबें दो काम सबसे जबरदस्त रूप से करती हैं जो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा कर पाएगा। पहली बात, किताबें हमें उस कल्पना की दुनिया में ले जाती हैं, या यूं कह लीजिए कि हमारी अपनी एक कल्पना तो है ही, उस कल्पना को और व्यापक बना देती है, हमारी इस कल्पना की दुनिया को समृद्ध बना देती हैं, ताकतवर बना देती हैं, मजबूत बना देती हैं, सुंदर बना देती हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो हमारे पैर हमारी जमीन पर ही रहने देती हैं। किताबों की ये बहुत बड़ी विशेषता है, वो आपको इस दुनिया से विमुख नहीं करती अगर आप किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे तो। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि पहली बात से किसी भी मायने में कम नहीं है, वो ये कि जो किताबें हैं वो बेसिकली आपको केवल पाठक ही नहीं बनाती, बल्कि अद्भुत और विलक्षण तरीके से आपको रचनाकार भी बना देती है, आपको रचयिता भी बना देती है। अब आप कहेंगे कि ये रचयिता कैसे बन गए। कभी आप गौर कीजिए, आप एक कहानी पढ़िए, आप एक उपन्यास पढ़िए, आप एक कविता पढ़िए, आप एक गजल पढ़िए, जो भी आपके पसंद का विषय है आप उसे पढ़िए, और आप देखेंगे कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसकी इमेजेस क्रिएट करने लगता है। और ये जो इमेजेस हैं ये आपने क्रिएट की हैं, आपके दिमाग ने क्रिएट की हैं। अगर किताब में आप पढ़ रहे हैं कि एक बड़ा सुंदर सा गांव था, तो आपके दिमाग में एक सुंदर सा गांव उभर जाता है। और ये सुंदर सा गांव कौन सा होता है, तो आपका अपना गांव होता है। तो ये गांव कौन रच रहा है, आप रच रहे हैं। तो ये जो किताबें हैं मित्रों, कल्पना करके देखिए कि आपको रचयिता भी बना रहा है, आप पाठक भी हैं, आप रचयिता भी हैं। सच मायने में आप लेखक से ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लेखक होता है वो तो लिखते समय सिर्फ रचयिता होता है, और जब वो रच रहा होता है तो बहुत जबरदस्त किस्म के मानसिक संघर्ष से वो गुजरता है, बहुत ज्यादा उसको पीड़ा झेलनी पड़ती है। आप जबकि पुस्तक पढ़ रहे हैं रच भी रहे हैं और बकायदे उसका आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि वो आपकी कल्पना का विस्तार कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये काम कोई दूसरा कर सकता है, सिर्फ किताबें ही कर सकती हैं। और मित्रों, इस विषय को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे ये पढ़कर बहुत सुकून मिला कि दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है, शनिवार और रविवार को उसमें जबरदस्त भीड़ रही, और इसके लिए मैं सच में जित जो लोग भी वहां गए थे उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, और जो मेरे प्रिय श्रोता हैं उनसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त इन किताबों के साथ दोस्ती करने के लिए भी निकालें। आप किताबों में गोते लगाने लगेंगे, और जब आप गोते लगा करके निकलेंगे तो आप देखिए कि अपने को आप कितना पवित्र महसूस करते हैं और कितना सुकून आपको अनुभव होता है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।